एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपका साथी मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी साथी। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर करती है, मतलब हमारे सोचने के तरीके के बारे में ही हमारी सोच बदल सकती है।
हाँ, किताब का नाम है थिंकिंग और लेखक हैं शॉन गैलागर और ज़कारिया डोरमन।
और ये किताब आज इतनी जरूरी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सोचना बस दिमाग के अंदर की बात है, एक प्राइवेट सी फिल्म जो चल रही है।
बिल्कुल, पर क्या ये सच है? ये किताब इसी आइडिया को चैलेंज करती है, पूछती है भाई सोच असल में होती कहाँ है, क्या बस दिमाग में या कहीं और भी?
सही सवाल। और ये हमें सीधे लेखकों तक ले जाता है। शॉन गैलागर, ये कोई नया नाम नहीं है इस फील्ड में।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो दुनिया के जाने माने दार्शनिक हैं, खासकर जो मन का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ माइंड और फिनोमिनोलॉजी।
फिनोमिनोलॉजी, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है सुनने में।
हाँ, पर इसका मतलब सीधा सा है, हमारे अनुभव जैसे हमें महसूस होते हैं, बस उनका अध्ययन बिना किसी पहले से बनी राय के। और गैलागर की खासियत है एम्बॉडीड कॉग्निशन।
एम्बॉडीड कॉग्निशन यानी वो सोच जो हमारे शरीर से जुड़ी है।
एग्जैक्टली, सोच जो हमारे शरीर में बसी है उससे प्रभावित है। उनकी किताब है हाउ द बॉडी शेप्स द माइंड, वो तो इस फील्ड में मील का पत्थर मानी जाती है।
और उनके साथ है ज़कारिया डोरमैन, वो भी फिलोसोफर है और उनका काम कॉग्निटिव साइंस में है।
हाँ, यानी मन और सोच की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन। और इन दोनों की जोड़ी की खासियत यह है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं बनाते।
अच्छा।
हाँ, मतलब दशकों की रिसर्च है इनके पीछे, और ये मुश्किल आइडियाज को बहुत सरल तरीके से समझाते हैं आम लोगों के लिए।
सही कहा, ये सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे, ये तो सोचने का एक पूरा नया तरीका, एक नया मॉडल, एक पैराडाइम पेश कर रहे हैं।
और इनका कहना है कि मन को समझना है तो सिर्फ दिमाग को स्कैन करना काफी नहीं है।
बिल्कुल, पूरे इंसान को देखो, उसका शरीर, उसके काम, दुनिया में उसकी जगह क्या है।
तो ये किताब क्या करती है? ये हमें पुराने मॉडल से मिलवाती है पहले।
हाँ, वो डिकार्ट वाला आइडिया कि मन अलग शरीर अलग, जिसे कार्टेशियन ड्यूअलिज्म कहते हैं।
और फिर उसकी कमियां दिखाती है और एक नया नक्शा पेश कर दिया है ना?
एकदम, ये हमें एक तरह की यात्रा पर ले जाती है। ये दिखाती है कि सोच कोई खोपड़ी के अंदर का रहस्य नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर से, हमारे आसपास के माहौल से, हमारे कामों से, और हाँ, यहाँ तक कि हमारे औजारों से भी जुड़ी है।
औजारों से? जैसे?
जैसे नोटबुक, फोन। इस नए नक्शे को ये कहते हैं 4E मॉडल।
4E, ये क्या बला है?
हाँ, ये 4E से शुरू होने वाले अंग्रेजी शब्द है। एम्बॉडीड,
एम्बॉडीड मतलब शारीरिक।
हाँ, सोच शारीरिक है, हमारे शरीर की बनावट, हमारी इंद्रियों, हमारे हिलने डुलने की क्षमता पर निर्भर। दूसरा एम्बेडेड।
एम्बेडेड यानी माहौल में स्थित।
बिल्कुल, सोच हमेशा किसी माहौल में होती है, फिजिकल, सोशल, कल्चरल। तीसरा इनएक्टेड।
इनएक्टेड मतलब क्रियाओं से बनी हुई।
हाँ, सोच दुनिया के साथ हमारी एक्टिव बातचीत से बनती है, करने से आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। और चौथा, जो सबसे मजेदार है, एक्सटेंडेड।
एक्सटेंडेड यानी फैली हुई, विस्तृत।
हाँ, हमारी सोच सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित नहीं, ये बाहर फैल सकती है, हमारे औजारों तक।
अरे वाह, तो ये चारों ई, एम्बॉडीड, एम्बेडेड, इनएक्टेड, एक्सटेंडेड, ये मिलकर सोच की एक पूरी नई तस्वीर बनाते हैं।
बिल्कुल, कि सोचना कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक एक्टिव क्रिया है जो हम दुनिया में करते हैं।
ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही पलट देता है।
हाँ, और यही इस किताब का मकसद भी है, मुझे लगता है। ये हमें अपनी सोच को एक स्किल की तरह देखने में मदद करती है, जिसे हम बेहतर बना सकते हैं।
अच्छा, तो चलिए इन 4E विचारों को थोड़ा और खोलते हैं। शुरू करें पहले वाले से, एम्बॉडीड, शारीरिक सोच।
हाँ, करते हैं। देखो, पुरानी सोच क्या थी? कि दिमाग तो बॉस है और शरीर उसका नौकर।
हाँ, यही सुनते आए हैं।
पर ये किताब कहती है शरीर सिर्फ नौकर नहीं है, वो सोचने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
लेकिन कैसे? वो रोडिन की मूर्ति है ना, द थिंकर।
हाँ, है ना, एक आदमी अकेले बैठकर गहरे सोच में डूबा हुआ।
वही, वो इमेज तो यही दिखाती है कि सोचना अंदरूनी काम है,
दिमागी कसरत।
पर गैलागर और डॉरमैन कहते हैं कि ये तस्वीर अधूरी है, भ्रामक है। हमारी सोच हमारे शारीरिक अनुभवों से गहराई से जुड़ी है। अपनी भाषा ही देख लो।
भाषा में कैसे?
हम कहते हैं मुश्किल समस्या का बोझ, तर्क का आधार, खुशी से उछल पड़ना, ये सब क्या है? शारीरिक रूपक है, बॉडीली मेटाफर्स।
अच्छा, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं वो भी कहीं ना कहीं शारीरिक अनुभवों पर टिके हैं।
काफी हद तक। और वो ब्रेन इन अ वैट वाला आइडिया याद है, एक गडंकन एक्सपेरिमेंट?
हाँ हाँ
कि एक दिमाग को जार में रख दो, कंप्यूटर से सिग्नल दो,
हाँ,
तो क्या वो सोचेगा?
लेखक कहते हैं नहीं, सही मायने में नहीं सोच सकता, क्योंकि बिना शरीर, बिना सेंसरी इनपुट, बिना दुनिया से जुड़े सोच का बेस ही क्या बचा?
हाँ,
सोचना सिर्फ न्यूरॉन्स का फायर करना नहीं है, ये महसूस करने, हिलने डुलने, दुनिया में होने का नतीजा है। हमारी फिजिकल क्षमताएं जैसे चलना, चीजें पकड़ना, ये सब हमारे सोचने के तरीके को शेप देती हैं।
ये तो हुआ पहला ई, एम्बॉडीड,
हाँ,
शरीर का रोल।
हाँ,
अब दूसरा ई, एम्बेडेड, सोच का माहौल में होना। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि हम वैक्यूम में नहीं सोचते हैं। हमारी सोच हमेशा एक खास जगह, एक खास समय, एक खास समाज और संस्कृति में होती है।
जैसे?
जैसे आप भारत के किसी छोटे गांव में जैसे सोचते हैं, वो शायद टोक्यो के किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में सोचने से अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपका माहौल, आपका कॉन्टेक्स्ट अलग है।
पर माहौल हमें प्रभावित कैसे करता है? देखो, माहौल हमें एक्शन के मौके देता है, अपॉर्चुनिटीज।
हाँ,
जैसे एक कुर्सी हमें बैठने का अवसर देती है, दरवाजे का हैंडल खोलने का। इन्हें तकनीकी भाषा में अफोर्डेंसेस कहते हैं।
अफोर्डेंस यानी पर्यावरण हमें क्या करने के लिए उकसाता है या करने देता है।
एग्जैक्टली।
और हमारी सोच इन अफोर्डेंस के इर्द गिर्द घूमती है। हम प्रॉब्लम्स को वैसी सॉल्व करते हैं जैसे हमारा माहौल हमें करने देता है। हमारी संस्कृति, हमारे सामाजिक नियम, ये सब हमारे सोचने के पैटर्न बनाते हैं।
ठीक है, तो सोच शारीरिक है, एम्बॉडीड, और माहौल में स्थित है, एम्बेडेड।
हाँ,
अब तीसरा ई, इनएक्टेड, क्रियाओं से निर्मित। ये थोड़ा ट्रिकी लगता है। क्या मतलब है इसका? करना ही सोचना है?
हाँ एक तरह से फंडा ये है कि सोच सिर्फ दिमाग में इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं है,
अच्छा,
बल्कि दुनिया के साथ एक्टिवली जुड़ना है। सोच हमारे कामों से उभरती है, इट इमर्जेस। उदाहरण लो साइकिल चलाने का।
ठीक है, आप सिर्फ रूल बुक पढ़कर साइकिल चलाना सीखते हो? नहीं ना, आपको साइकिल पर बैठना पड़ता है, गिरना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। आपकी सोच, या कहो समझ, आपके शरीर और साइकिल के बीच की इंटरैक्शन से डेवलप होती है।
मतलब जैसे कोई कारीगर होता है या कोई म्यूजिशियन जो बिना ज्यादा कॉन्शियसली सोचे अपना काम करता जाता है, वो भी एक तरह की सोच है।
बिल्कुल, इसे नोइंग हाउ कहते हैं, कैसे करना है ये जानना। ये नोइंग दैट से अलग है, यानी फैक्ट्स जानना। कई बार एक्सपर्टीज नियमों से नहीं आती, बल्कि इसी सहज क्रियान्वयन, इसी इनएक्शन से आती है। हम दुनिया को पैसिवली देखते नहीं हैं, हम उसमें एक्टिवली हिस्सा लेते हैं, और इसी प्रोसेस में हमारी समझ बनती है। और इसी तरह हम दूसरों को समझते हैं,
दूसरों को कैसे?
सिर्फ उनके चेहरे के भाव या शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कामों को देखकर, उनके इरादों को समझकर, और पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखकर। इसे डायरेक्ट परसेप्शन कहते हैं, सीधा अनुभव।
ये वाकई दिलचस्प है, और इसने मुझे चौथे ई के बारे में और भी क्यूरियस कर दिया है।
हाँ
एक्सटेंडेड, विस्तारित सोच।
हाँ
ये आइडिया कि सोच हमारे दिमाग और शरीर से बाहर भी फैल सकती है, ये कैसे होता है?
हाँ यहीं पर मामला सबसे रेडिकल हो जाता है। सोचो जरा, जब आप कुछ याद रखने के लिए नोटबुक में लिखते हो,
हाँ लिखती हूँ,
या रास्ता खोजने के लिए फोन में मैप्स देखते हो, या कोई गणितज्ञ है वो ब्लैकबोर्ड पर समीकरण हल कर रहा है, तो क्या ये चीजें सिर्फ बाहरी मदद हैं, या ये उस समय आपकी सोच की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती हैं?
मैं तो कहूंगी ये मदद है बाहर से।
एक्सटेंडेड माइंड की थ्योरी कहती है कि ये सिर्फ मदद नहीं है, ये उस समय आपके कॉग्निटिव सिस्टम का, आपकी सोचने की मशीनरी का हिस्सा है।
हिस्सा है।
हाँ, आपकी सोच फैली हुई है, दिमाग प्लस शरीर प्लस नोटबुक, या फोन या ब्लैकबोर्ड, जैसे किसी नेत्रहीन व्यक्ति की छड़ी होती है ना,
हाँ,
जार नहीं रह जाती। वो दुनिया को महसूस करने के लिए उसके शरीर का, उसके सेंसरी सिस्टम का एक्सटेंशन बन जाती है।
एक मिनट, मतलब आप कह रहे हैं कि मेरा फोन, जब मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ, वो मेरे दिमाग का हिस्सा बन जाता है?
ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है?
हाँ है, ये विचार थोड़ा चौंकाता है। हिस्सा बनने का मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली दिमाग का पार्ट बन गया।
अच्छा।
मतलब ये कि जब हम सोचने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का, हमारे सोचने के प्रोसेस का एक जरूरी अंग बन जाता है, इंटीग्रल पार्ट। वो सोच उस टूल के बिना वैसी नहीं हो पाती।
ये तो हमारी सेल्फ की बाउंड्रीज पर ही सवाल उठा देता है।
बिल्कुल। और सोचो इसका AI के लिए क्या मतलब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या मशीनें सोच सकती हैं इस नजरिए से?
हाँ, क्या मतलब है?
ये नजरिया पूरी डिबेट बदल देता है। अगर सोच सिर्फ कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन नहीं है, बल्कि एम्बॉडीड है, एम्बेडेड है, एनएक्टेड है, एक्सटेंडेड है।
बिल्कुल। तो सिर्फ एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर बना देना काफी नहीं होगा, एक सच्ची सोचने वाली मशीन को शायद बॉडी जैसा कुछ चाहिए होगा, उसे दुनिया से इंटरैक्ट करना होगा, सीखना होगा, उसका एक इतिहास, एक डेवलपमेंट होगा।
मतलब सिर्फ सिंबल मैनिपुलेशन काफी नहीं है, जैसा ट्यूरिंग टेस्ट मानता है।
शायद नहीं, वास्तविक समझ के लिए शायद और कुछ चाहिए।
तो ये 4E, एम्बॉडीड, एम्बेडेड, एनएक्टेड, एक्सटेंडेड, ये मिलकर हमें सोच का एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क देते हैं। चलिए अब इस किताब के कुछ जो मेन मैसेजेस हैं उनको समेटते हैं।
हाँ।
सबसे पहला और सबसे जरूरी तो यही 4E फ्रेमवर्क ही है ना?
बिल्कुल, कि सोच सिर्फ अंदर नहीं बल्कि हमारे शरीर में, माहौल में, कामों में और औजारों में फैली हुई है, एक तरह से बुनी हुई है।
दूसरा बड़ा संदेश मुझे लगता है वो कार्टेशियन डुअलिज्म का खंडन है, मन और शरीर का अलगाव।
हाँ, कि हम कोई दिमाग नहीं है जो शरीर चला रहे हैं, हम सोचते हुए शरीर हैं, वी आर थिंकिंग बॉडीज।
तीसरा, एक्शन और इंटरैक्शन की इम्पोर्टेंस। हम पहले करते हैं फिर शायद उस पे सोचते हैं।
सही कहा, हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट सोच है वो भी हमारी बेसिक फिजिकल और इंटरैक्टिव स्किल से ही निकलती हैं। जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना, करके सीखना, ये उसी आइडिया से जुड़ता है।
चौथा, सोच का सामाजिक होना, सोशल नेचर।
बहुत जरूरी पॉइंट, हम अकेले में नहीं सोचते, हमारे दिमाग समाज में दूसरों के साथ इंटरैक्शन से शेप होते हैं। भाषा, कल्चर, सामाजिक तौर तरीके, ये सब हमारी सोच के हिस्से हैं। हमारे यहाँ जो कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस है, ये विचार उसे सपोर्ट करता है।
और पांचवा, जो मुझे बहुत होप देता है, कि सोचना एक स्किल है जिसे सुधारा जा सकता है।
हाँ, क्योंकि ये हमारे शरीर, माहौल और औजारों से जुड़ा है, तो हम इन चीजों को बदलकर बेहतर सोच सकते हैं, ये कोई मिस्ट्री नहीं है।
ये बहुत पॉजिटिव बात है। अच्छा, किताब में कुछ यादगार विचार या पंक्तियां भी होंगी?
हाँ, वैसे सीधे कोटेशन कम है, पर जो कोर आइडियाज है उन्हें हम ऐसे कह सकते हैं। जैसे पहला,
बताइए।
सोच कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो हमारे अंदर होती है, बल्कि यह एक गतिविधि है जो हम अपने शरीर के साथ दुनिया में करते हैं। हम सोच को गलत जगह तलाशते रहे हैं, यह दिमाग में छिपी नहीं है बल्कि हमारे कार्यों में दिखाई देती है।
वाह, ये तो सोच को प्राइवेट से पब्लिक बना देता है, फिजिकल एक्टिविटी।
बिल्कुल। दूसरा विचार, जो मन शरीर के अलगाव को नकारता है, हम शरीर में फंसी आत्माएं नहीं हैं, हम जीवित सोचते हुए शरीर हैं।
ये इंसान को एक होलिस्टिक यूनिट की तरह देखता है।
और ये वाला एक्सटेंडेड माइंड पर, आपकी नोटबुक, आपका स्मार्टफोन, ये सिर्फ बाहरी सहायक नहीं है, जब आप किसी समस्या को हल करने के लिए इनका उपयोग करते हैं तो वे आपके दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं।
ये मेरा भी पसंदीदा है। यह हमारी अपनी बाउंड्रीज को चैलेंज करता है।
और एक और, सोशल अंडरस्टैंडिंग पर, किसी दूसरे व्यक्ति को समझना उनके छिपे हुए आंतरिक संसार की जासूसी करना नहीं है, ये उनके कार्यों में अर्थ देखना, उनके साथ एक साझा दुनिया में शामिल होना और उनकी शारीरिक उपस्थिति में व्यक्त इरादों का जवाब देना है।
ये दूसरों को समझने का एक ज्यादा डायरेक्ट, ज्यादा इंट्यूटिव तरीका बताता है।
हाँ, थ्योरी बनाने या सिमुलेशन करने से ज्यादा नेचुरल।
तो इन सब गहरे विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर हो सकता है? मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है?
कई है। पर्सनल लेवल पर सोचो, अगर आप कभी एंग्जाइटी महसूस कर रहे हो या क्रिएटिव ब्लॉक है,
हाँ होता है अक्सर,
तो सिर्फ और ज्यादा सोचने के बजाय अपनी बॉडी पर ध्यान दो। उठो, थोड़ी देर टहल लो, कुछ गहरी सांसें लो या थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो। अक्सर फिजिकल स्टेट बदलने से मेंटल स्टेट भी बदल जाती है।
माइंडफुलनेस या मेडिटेशन भी शायद इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं।
काफी हद तक, हाँ। अब सोचो काम या पढ़ाई के माहौल के बारे में,
उसमें कैसे लागू करें?
अपने वर्क स्पेस को सिर्फ डेस्क को सीमित समझो, उसे एक कॉग्निटिव इकोसिस्टम की तरह देखो, सोचने का माहौल।
कॉग्निटिव इकोसिस्टम, अच्छा।
क्या आपके पास लिखने के लिए व्हाइट बोर्ड है? क्या नोट्स आसानी से दिखते हैं? क्या माहौल में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है? और जब कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ स्क्रीन पर मत अटके रहो।
तो क्या करें?
उठो, चलो फिरो, हो सके तो प्रॉब्लम का कोई फिजिकल मॉडल बनाओ या किसी कलीग से उस पर बात करो। ये सब आपकी सोच को एक्टिवेट और एक्सटेंड करने के तरीके हैं।
और शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए तो ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
हाँ बिल्कुल, ये पारंपरिक लेक्चर सुनो और रटो मॉडल के खिलाफ है। ये करके सीखने, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन पर जोर देता है। क्लासरूम का डिजाइन तक मैटर करता है।
और टेक्नोलॉजी डिजाइन में भी इसका रोल है।
बहुत बड़ा। अच्छा, यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स क्या होता है? जब टेक्नोलॉजी हमारे शरीर और हमारे इरादों का एक नेचुरल एक्सटेंशन लगे।
जैसे
जैसे स्मार्टफोन पर स्वाइप करना हमें टाइप करने से ज्यादा इंट्यूटिव क्यों लगता है? क्योंकि ये हमारे फिजिकल जेस्चर से ज्यादा मिलता है। ये एम्बॉडीड और इनेक्टेड प्रिंसिपल्स का ही नतीजा है।
तो इस पूरी चर्चा से हमारे सुनने वालों के लिए फाइनल टेकअवेज क्या हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही है कि हम सिर्फ दिमाग नहीं है जो शरीर को चलाते हैं, हम पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हैं। हमारी सोच, फीलिंग्स, बॉडी, दुनिया सब एक दूसरे में गुंथे हुए हैं।
मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली बात वो एक्सटेंडेड माइंड की थी।
हाँ,
ये आइडिया कि मेरी सोच सिर्फ मेरी खोपड़ी में नहीं बल्कि मेरे फोन या मेरे डायरी तक फैली हो सकती है, ये मैं कौन हूँ इसी की डेफिनेशन पर सवाल उठाता है। कहाँ मैं खत्म होता हूँ और कहाँ मेरे टूल्स शुरू होते हैं, ये बड़ा सवाल है।
और मेरे लिए ये जानना बहुत राहत की बात है कि सोचना कोई फिक्स चीज नहीं है, ये एक डायनामिक स्किल है
हाँ
जिसे हम प्रैक्टिस से अपनी आदतों और माहौल को बदलकर इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी सोच हमारे दिमाग से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है।
बिल्कुल, संक्षेप में कहें तो हमारा शरीर सोचता है, हमारा माहौल सोचता है, हमारे काम सोचते हैं और हमारे औजार भी सोचते हैं हमारे साथ मिलकर।
हम अकेले सोचने वाले द्वीप नहीं हैं।
नहीं, हम दुनिया के साथ जुड़े हुए एक्टिव प्राणी हैं। शायद यही सबसे बड़ा सबक है और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है।
क्या सवाल?
अगर हमारे उपकरण, हमारी टेक्नोलॉजी हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है तो जिस तरह हम लगातार टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं वो न सिर्फ हमारे सोचने के तरीके को बल्कि हम असल में कौन है उसे कैसे बदल रहा है, सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।